अंदर है, जरूरत है अपने सद्विवेक का प्रयोग करके इस जीवन को बहुत सुंदर बना देना। मुझे किसी की कोई फीलिंग याद आ रही है, वो पहले आपके सामने रखता हूँ, आपको काम आएगी, रख लो। किसी ने कहा मुझे बहुत आगे जाना है पर मेरा पुरुषार्थ नहीं होता। मैंने सोचा वो नहीं आई होगी माता बेचारी, मैंने सोचा तो उमंग रखो, लास्ट सो फास्ट जाना है, उमंग से सब कुछ अच्छा हो जाता है। कहा नहीं, मैं तो 20 साल से हूँ ज्ञान में, लास्ट नहीं आई हूँ। उसका चेहरा तो सब कुछ कह रहा था। दूसरी माता जो केवल 2 साल से ज्ञान में थी, उसके साथ बैठी थी, बड़े उमंग में, बड़े नशे में, क्या हो रहा है मनुष्य के साथ, कई लोग न दूसरों को फ्री करते न स्वयं को। बहुत जरूरी हो गया है परिवार में दूसरों को भी फ्री करें। अब बड़े हैं परिवार के, आपका काम उन्हें गाइड करना तो है, लेकिन उनके पीछे लगे रहना इसकी जरूरत नहीं। हम हंसी में कभी कभी कहा करते हैं, सोचते हैं जैसे भगवान भी हमारे पीछे लग गया है ना, छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बनाकर ही छोड़ूंगा, उससे पहले तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। हम थोड़ा अपने को फ्री करें, दूसरों को फ्री करें, समझ रहे हैं ना। अब क्योंकि मैं बहुत जगह क्लास करा रहा हूँ, मुझे ये तो भूल जाता है यहाँ मैंने क्या कराई थी, कहीं रिपीट हो जाए तो आप माइंड न करना। एक माँ के 2 बड़े बच्चे, एक मजिस्ट्रेट 35 साल का, सब समझ सकते हैं जो मजिस्ट्रेट है वो बहुत बुद्धिमान होगा ना, लेकिन ये माँ उससे परेशान, क्यों, मेरी नहीं सुनता। माताजी बिना पढ़ी लिखी हैं। मैंने उसको बहुत समझाया कि तुम्हारा लड़का बड़ा हो गया, मजिस्ट्रेट है वो। कहा पर क्या हुआ, लड़का तो मेरा है ना, बच्चा है वो। तो बेचारा वो मजिस्ट्रेट भी माँ का सम्मान करता है, थोड़ा दबाव फील करता है, ये अच्छा नहीं रहता ना। उनको भी फ्री करें, अपने को भी फ्री करें, निकाल दें अपने को बहुत चीजों से। और अगर हम अपनों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो इस समय किस चीज की जरूरत है, सबको, अपनों को भी, हम उन्हें गुड वाइब्रेशंस दें, इसकी बहुत जरूरत है। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है, मेरी सुने, मेरी ही बात माने, वो मानते नहीं तो परेशान रहें, इससे नुकसान ही नुकसान, उनका भी और अपना भी। हमें तो दादी जानकी की बात वो याद रहती है, शुरू में कहा करती थी जब बाबा व्यक्त हुए, संगठन में ऐसे रहो जैसे तुम अकेले हो, कि संसार में आंखें और कान बंद करके जियो। बहुत अच्छी बातें रही है हमारे लिए, सबके लिए बहुत सुंदर है। आज मैं आप सभी को एक गहरी बात की ओर ले चलता हूँ, ये जीवन की बहुत सुंदर धारणाएं हैं। अपने चित्त को शांत रखना ये सबसे से बड़ी बुद्धि बनी है, बाबा से हमें ये डिवाइन विजडम मिली है, इसका हम प्रयोग करें अपने चित्त को शांत करने में। बहुत कुछ दिखता है हर एक को, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार में रहते हो या लौकिक में, सब कुछ बहुत कुछ दिखता है, परंतु हम ये मान लें, अपने को ट्रेंड कर दें कि हमें अब केवल अपने लक्ष्य पर ही फोकस करना है। ये समय है जन्म जन्म का भाग्य बनाने का। तो आज से सभी बहुत अच्छी धारणा अपना लें और इसको आगे बढ़ाएं। इसमें समय लगता है, ये बहुत जल्दी नहीं होती। बेफिकर बादशाह बनना है हमें। यहाँ के बेफिकर बादशाह जन्म जन्म के बादशाह बन जाएंगे। बेफिकर निश्चिंत, केयर फ्री भी, और संगठनों में रहते हुए निर्संकल्प भी। इससे ही हमारी शक्तियां बढ़ेंगी और जिसके पास जितनी शक्तियां होंगी सत्ता उनको ही मिलेंगी। यहाँ की शक्तियां जन्म जन्म की सत्ता दिलाएगी, ताज दिलाएगी। इस टॉपिक पे आने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक और बात याद आई। अपने सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग हम एक और अच्छे रूप में करें। सभी करेंगे, कर सकते तो हैं, पर अब करेंगे। सवेरे या शाम किसी भी समय कभी कभी एक बार कर लिया करें, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। कैसा होगा इसकी एक थोड़ी लिस्ट बना दें, संकल्प कर लें और फिर बहुत शांत में बैठकर, मन पूरी तरह शांत हो, अपने भावी जन्मों का विजन बना दें। हमें महसूस होगा कि हम अपने भाग्य के निर्माता हैं। सबको पता है भाग्य, कर्म और फल, कर्म और फल, ये जो सर्किल चलता है यही भाग्य है, कर्म और फल। इंडियन फिलोसफी में इस पर बहुत डिबेट होती रही पहले से ही आचार्यों के बीच। भाग्य क्या है, भाग्य बड़ा है या कर्म बड़ा है? दोनों मत रहे, क्योंकि दोनों ही चीज दिखती हैं। कहीं लगता है कि कर्म प्रधान है, कर्म बड़ा है, तो कहीं ये लगता है कि मनुष्य भाग्य की कठपुतली है। आज ही शायद बाबा कह रहे थे ना, तुम कठपुतलियां हो, कल तो ऐसा लगता है कि भाग्य हमें चलाता है। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं मिलता। कई लोगों को मिट्टी को भी हाथ लगाएंगे तो सोना हो जाता है। तो भाग्य भी बहुत बड़ी चीज है, ये दिखाई देता है। लेकिन भाग्य कर्म और फल, कर्म और फल, कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। तो एक विजन बनाएं सभी, अपने सभी 84 कहने में अब हमें आदत पड़ गई है, 84 को ख्याल में लाएं, सामने लाएं कि हमारे 84 शरीर, हर जन्म मेरा ऐसा हो। अब सोचो कैसा, हर जन्म में मेरे सिर पर क्या हो, ताज हो। बहुत अच्छा रहेगा ना, भले ही हर जन्म में किसी के सिर पे भी नहीं हो सकता, लेकिन हम अच्छी से अच्छी विजन तो बनाएंगे ही ना। हर जन्म में नहीं हो सकता, 84 में से किसी के पास 20 जन्म, किसी के 30, इतनों में ही रहेगा, बाकी दूसरे दूसरे फील्ड में। हमारे अच्छे एक्ट चलेंगे, हीरो एक्टर होंगी बहुत सारी आत्माएं हम में से, तो अपने सारे पार्ट्स का निर्माण हम यहाँ करते हैं। मैं दूसरी क्लास एक लेना चाहता हूँ आपके बीच में, सर्व खजाने। एक एक खजाने से हमारा भविष्य का रिलेशन क्या है उस पे हम चर्चा करेंगे। तो आज एक विजन बनाएं, हर जन्म में मैं दाता रहूं, हाथ सदा देने का हो। हर जन्म में हम संतुष्ट आत्माएं रहें। मेरा हर जन्म ऐसा हो जो दूसरों के हम काम आते रहें, अपने देश के काम आते रहें, धर्म के काम आते रहें। धर्म पर भी विपदाएं आती रही ना बार बार, हिंदू धर्म पर बहुत विपदाएं आई, और बीच बीच में ऐसे कोई महान व्यक्ति हुए जिन्होंने उस विपदा को समाप्त कर दिया। जैसे आप जानते हैं वर्तमान के ही स्वामी विवेकानंद, आपको बहुतों को नहीं पता होगा, उस समय भारत में क्रिश्चियन मिशनरी का फोर्स बहुत तेज होता जा रहा था, और जब वो इधर आए तो लोगों ने देखा कि ये तो बड़े पावरफुल लोग हैं, बड़े भारी स्कॉलर हैं, तो ठंडा हो गया थोड़ा। हंसी की बात याद आ गई मुझे, स्वामी विवेकानंद चाय पी रहे थे, एक अंग्रेज भी अमेरिका में चाय पी रहा था। माइंड न करें, मैं ब्रिटेन में बैठा हूँ फिर भी सुना रहा हूँ आपको। अंग्रेज सीधा कप से पी रहा था गरम गरम, और स्वामी जी जरा प्लेट में डाल के पी रहे थे। अंग्रेज ने हंसा, क्या तुम लोग इधर से इधर डाल के पीते हो। स्वामी विवेकानंद तो बहुत बुद्धिमान थे ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उसने फट से उत्तर दिया कि हमारे देश में एक नियम है, अतिथि देवो भव। अभी कोई अतिथि आ जाए तो तुम्हारा कप तो झूठा है, मेरा कप ठीक है, मैं उसे भी दे दूंगा, लो भाई तुम भी पियो। एक जगह ओपनिंग करने गए स्वामी जी, उन्होंने स्वामी जी का इंसल्ट करने के लिए गीता को सबसे नीचे रख दिया था किताबों के। स्वामी जी बड़े खुश हुए, वो तो सोच रहे थे परेशान होगा आते ही। स्वामी जी बड़े खुश हुए और गीता को खींच लिया तेजी से, सारी किताबें गिर गई। कहा वाह, आप लोगों ने हमारी गीता को कितना सम्मान दिया, फाउंडेशन बना दिया सबका। वो फिर देखते रह गए बेचारे कि इसके आगे हमारी दाल नहीं गलती है। तो हम सभी अपने हर जीवन की एक विजन बनाएं, मेरा हर जन्म दूसरों को सुख देते हुए बीते, मेरा हर जन्म, बोलो अब आप सोचो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, ऐसा हो जिसमें मेरे पास हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस भरपूर रहे। तो बहुत सुंदर विजन बनाने से वही चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं अंदर में, काम करने लगती हैं तेजी से, और हम वर्तमान के लिए भी सोचने लगते हैं कि अगर हमें धर्म के काम आना है जन्म जन्म, तो हमें अपने अंदर प्योरिटी की शक्ति बढ़ानी है। अगर हमें अपने देश के काम आना है तो अपनी आठों शक्तियों को बढ़ाना है। और इस समय तो हम भगवान के काम आ गए, कितनी अच्छी बात है हम सब के लिए। जो जन्म जन्म हमारे काम आता रहा और जो अब भी हमारे बहुत काम आता है, अब हम उसके भी काम आ गए, तो हम अपने चित्त को शांत करेंगे, स्वयं को बेफिकर बादशाह बनाएंगे। बहुत सोचने की आदत, चिंता करने की आदत यदि किसी में हो, उसे समाप्त करना है। कईयों में आदत होती है, बैठे बैठे ही बहुत सोचते रहे, जरा सा कुछ हो जाए बीमारी, बहुत सोच रहे हैं, बच्चे को कुछ हो गया, बहुत चिंता कर रहे हैं। पर मैंने ऐसी माताएं देखी बहुत पावरफुल, बच्चा बीमार हुआ कोई बात नहीं, दूसरे रो रहे हैं, ये उन्हें शांत कर रही है, आराम से हॉस्पिटल ले गए, ठीक हो गए। और अगर माँ परेशान हो जाए तो वो अपने कर्तव्य भूल जाएगी ना, उसे ले जाना है हॉस्पिटल, ले जाएगी बाजार में, भूल के कहेगी कहाँ गई, कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत स्टेबिलिटी चाहिए हमें आने वाले समय के लिए। कई लोग सोचते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो, कैसे होगा, बड़ी गहरी प्रक्रिया उसकी है, सब चीजों को तो कोई जान भी नहीं सकता। हमारे यहाँ भारत में क्या मधुबन में ही शांतिवन में एक इंजीनियर हैं, उन्होंने एक घंटे का बहुत अच्छा लेक्चर और ये स्लाइड्स उस पर तैयार की हैं, यूट्यूब पर और इस पे भी आ गया होगा नेट आदि पे, उसने बहुत डिटेल किया है कैसे पोल्स बदलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बदलेंगे धरती का, बिल्कुल साइंटिफिकली उसने बहुत सारी चीजें और वैज्ञानिकों के सामने उन्होंने ये पेश की थी कहीं विदेश में जाकर, मलेशिया में या कहीं, तो बहुत अच्छा उसमें वर्णन है। लेकिन क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं, ये तो अभी आगे चलकर देखेंगे। वैज्ञानिक भी बहुत ज्यादा भविष्यवाणी करते हैं, होता तो नहीं बहुत कुछ, अभी भी की हुई है एक, आपने सुना होगा कि 15 नवंबर से 30 नवंबर तक धरती पे अंधेरा रहेगा 15 दिन, सूरज दिखेगा नहीं। अब कितना होता है और क्या होता है ये तो समय बताएगा, पर विनाश और परिवर्तन में बहुत ही वंडरफुल घटनाएं होंगी, क्योंकि एक और विनाश भी होना है, दूसरी ओर बहुत बड़ा परिवर्तन भी होना है। देखिए मैं आपके सामने एक बात रखूं, एटॉमिक विस्फोट होंगे, एक तरफ बहुत भारी विनाश होगा और दूसरी तरफ क्या होगा उसका एक पॉजिटिव पहलू, कि ये जो सारा वायुमंडल है जो गंदगी से भरा हुआ है, अगर इसको एक पावरफुल दूरबीन से देखें तो चारों ओर गंदगी गंदगी दिखाई देगी, ये क्लीन हो जाएगा, अग्नि सबको क्लीन कर देगी। तो विनाश के साथ बहुत बड़ा परिवर्तन का कार्य भी होगा। लेकिन हमें एक चीज और याद रखनी है कि नेचुरल कैलेमिटीज जो बहुत बड़ा कार्य करेंगी, सफाई, बाबा कहा करते थे झाड़ू प्रकृति लगाएगी, बाबा के तो शब्द ही ऐसे है ना, भगवान को क्या लगता है विनाश होगा, उसको क्या लगेगा, बहुत अच्छा हुआ मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, बड़े दुखी थे, इधर लोग परेशान होंगे और उसको लगेगा मेरे बच्चे मेरे पास आ गए, बहुत अच्छा हुआ, होगा या नहीं। तो हम सभी अपने अंदर, मैं आपको नेचुरल कैलिमिटीज की बात कह रहा था, बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, जब तुम्हारी प्योरिटी नेचुरल हो जाएगी तब नेचुरल कैलिमिटीज होंगी। सारा जो सतयुग का माल है वो बहुत ज्यादा धरती में है, उसको ऊपर आना है, बहुत अथाह संपदा है धरती में, उसको ऊपर आना है, नेचुरल कैलेमिटीज से वो ऊपर आ जाएगा। तो हमें इन सब के लिए तैयार होना है। ये प्रकृति, प्रकृति की वास्तविक शक्ति कौन सी है, प्योरिटी। अब प्रकृति में संपूर्ण इम्प्योरिटी है, इधर से हम सबकी प्योरिटी के वाइब्रेशंस प्रकृति ग्रहण कर रही है, तो हमारी प्योरिटी के वाइब्रेशंस जब इम्प्योर वाइब्रेशंस को बाहर निकालेंगे तेजी से, ये होगा विस्फोट धरती में। इधर से फोर्स से कोई चीज जा रही हो, उधर की निकल रही हो तो हिल जाएगा ना सब कुछ, ऐसा होगा। इसलिए एक समय अब तेजी से आएगा जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपनी प्योरिटी को बहुत अच्छा बनाया होगा वो तो बहुत श्रेष्ठ पद प्राप्त करेंगे। उनके द्वारा तो बड़े बड़े कार्य अब भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे, लेकिन एक समय आ जाएगा बहुत जल्दी जब इस संसार की सभी आत्माएं और ब्राह्मण बहुत ज्यादा संपूर्ण प्योरिटी की ओर चलेंगे, तो ये प्रकृति में बहुत ज्यादा विस्फोट होंगे। और संपूर्ण प्योरिटी को बाबा ने भिन्न भिन्न तरह से डिफाइन किया हुआ है। साधारण संकल्पों से भी मुक्त हो जाना, एक है इम्प्योर संकल्पों से मुक्त होना, लेकिन उसके बाद साधारण संकल्पों से भी परे श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाना, यह है प्योरिटी। ध्यान देंगे आप इस बात पर, हमें नहीं केवल प्योर बनना है लेकिन पवित्रता का बल अपने अंदर भरना है। एक है प्योरिटी बढ़ाना, दूसरा है प्योरिटी का बल भरना। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ आपको। मान लो एक आत्मा बहुत प्योर है, उसके सभी इम्प्योर थॉट समाप्त हो गए हैं, लेकिन उसके पास ईर्ष्या द्वेष है, तो क्या होगा? उसकी प्योरिटी का बल ईर्ष्या द्वेष के कारण समाप्त होता रहेगा, तो उसकी प्योरिटी संसार को बल नहीं देगी। उसकी प्योरिटी एक प्रकाश बनकर संसार को प्रकाशित नहीं करेगी। तो प्योरिटी अर्थात ये जो छोटे छोटे मनोविकार हैं जिससे हमारी सूक्ष्म शक्तियां नष्ट होती हैं, उन पर विजय। कभी कभी हम देखते हैं बहुत अच्छी पवित्र आत्मा थोड़ी असंतुष्ट रहती है, और असंतुष्ट इसलिए कि उसको ठीक सेवा का चांस नहीं मिला, उसको किसी ने पूछा नहीं, उसको ठीक से सम्मान नहीं दिया गया, तो ये क्या हो जाता है? प्योरिटी की ताकत छीन हो जाती है। प्योरिटी में बहुत बड़ा तेज है, इसलिए हमें इन छोटी बातों से भी ऊपर उठना है। ऐसा ना हो कि हमने त्याग बहुत बड़ा कर दिया लेकिन हमारा त्याग सफल ना हो रहा हो। बहुत बहुत गहराई से आप इस पर आज विचार करना। त्याग कर दिया है सब ने, जो भी बाबा के बच्चे यहाँ बैठे हैं और संसार में हैं, बहुत बड़ा त्याग है हम सबका। सबसे बड़ा त्याग क्या होता है? घर तो छोड़ने की बात नहीं, शैलेश भाई सांसारिक इच्छाओं का त्याग कर दिया या नहीं? कितनी इच्छाएं लोगों को रहती है दुनिया में, सब छोड़ दी, एक मार्ग अपना लिया। लोग तो वैरायटी चाहते हैं ना, एक सा भोजन। हमें लोग हंसा करते हैं, तुम सदा यही भोजन खाते हो, 50 साल से यही खा रहे हो। मैंने कहा और खाने की तो कुछ इच्छा ही नहीं है, कपड़े भी ऐसे ही पहनते हो। हाँ, मुझे विदेशी आते थे ना शुरू में, कहते थे कितने साल से किचन में हो? मैंने कहा 30 साल हो गए। 30 साल से वही फेसेस देखते हो रोज? मैंने कहा हम तो, हमारी फेसेस तो बड़े डिवाइन है यहाँ सबके, और फेस देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहा हम तो बोर हो जाते हैं 6 मास में, बदलना चाहते हैं, दूसरी नौकरी ढूंढे, दूसरे फेसेस देखेंगे। कितना बड़ा त्याग है ब्राह्मणों का, सारी इच्छाएं छोड़ दी, मनोविकारों को त्याग कर दिया। तो अटेंशन प्लीज, बहुत बड़ा त्याग करके अगर हम बहुत अच्छी तपस्या नहीं करते तो हमारा त्याग निष्फल जाता है। ये बात मैंने बहुत पहले सीख ली थी, बाबा के समय एक बहन ने अपना जीवन समर्पित किया। बिल्कुल खोल के मैं कुछ चीजें बता देता हूँ ताकि सबको ख्याल रहे। बहुत साहूकार घर की वो माता थी, है अभी भी। चार बच्चे थे उसको, बिल्कुल छोटे, चारों को छोड़ के वो आ गई। बहुत भारी हंगामा हुआ उस स्थिति में, बहुत प्रसिद्ध लोग थे वो। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसका जीवन कहाँ रहने लगा, पूरा किचन में, समझ गए, सेवा करने में नहीं, किचन की, अपना खाना पीना बनाने में। अब भी वो है बहन, लेकिन उसके जीवन में रौनक नहीं रही, सेवा भी उससे ज्यादा नहीं हुई। पीछे मुझे मिली, मैंने कहा अरे बहन क्या, कहाँ हो आजकल? कहा मैं पेंटिंग सीख रही हूँ। मैंने कहा पेंटिंग सीख के क्या करोगे? कि अकेली रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ, तो पेंटिंग अच्छा रहेगा ना। मुझे बड़ी दया आती थी उस पे, जिसने इतना महान त्याग किया, बाबा का बहुत प्यार पाया, साकार बाबा के समय से। उसने अपने जीवन को डिवाइन नहीं किया, उसके जीवन में रौनक नहीं आई, उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा नहीं बना। ये हुआ त्याग, सफल नहीं हुआ। तो सबने त्याग किया है। आज आपके लिए चिंतन का विषय रहेगा, त्याग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? कहीं कर्मेंद्रियों के रसों में तो नहीं लग गए हैं? कहीं छोटी छोटी बातों में उलझ कर तो नहीं रह गए हैं? कहीं कामकाज में ही बिजी तो नहीं हो गया, सेवा हो या कामकाज हो? हमारा जीवन ईश्वरीय मिलन का जीवन है। इस जीवन में ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि बहुत रिफाइन और डिवाइन हो जाए, उसका ये समय है। बुद्धि तो हम सबके पास सदा ही रही थी, लेकिन अब जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिला है तो हमारी बुद्धि बहुत डिवाइन हो जाए। मैंने बाबा की एक बात सुनी थी बहुत साल पहले, तब वो बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। बाबा ने कहा था कि जैसे जादूगर लोग हाथ की सफाई से बहुत कमाल दिखाते रहते हैं, होता तो कुछ भी नहीं ना, ऐसे ही यदि तुम अपनी बुद्धि की सफाई कर लो तो तुम्हारे द्वारा कमाल होने लगेंगे। अब तब हमें पता न था बुद्धि को साफ कैसे करें, वे झाड़ू कैसे लगाए इसमें। फिर तो बाबा ने सब कुछ बता दिया, बुद्धि में गंदगी कुछ न रहे, सफाई हो जाए बुद्धि की, एक भी व्यर्थ संकल्प उसमें न रहे। देखिए हमारी बुद्धि विवेक शक्ति है, जिसमें हम विवेक भरते हैं। बहुत गहराई से इसको जानने की बात है, विजडम पूरी हमारी बुद्धि में आती है। आज बाबा कह रहे थे ना, ईश्वरीय मत आसुरी मत, आसुरी मत पर चलने से गिरावट। आसुरी मत का कुछ विवेक हमने अपनी बुद्धि में भर लिया था, उसे भी हम विवेक समझते थे, वो सद्विवेक नहीं था। मान लो शास्त्रों का ही विवेक भर लिया था, लेकिन वो विवेक नहीं था। अब बाबा ने जो बहुत रिफाइन ज्ञान दिया है, उससे हम एक विवेक विजडम भरें अपनी बुद्धि में, ज्ञान को विजडम बना दें। विचार करना आप, तो ये बुद्धि पहले इसको साफ कर दें, और साफ करके इसमें डिवाइन विजडम भर दें, तो इस बुद्धि के द्वारा चमत्कारी कार्य होंगे। क्योंकि सब कुछ हमारी बुद्धि में ही भरा हुआ है 84 जन्मों का, वो इमर्ज होने लगेगा और एक दिन वो आएगा हम सबके सामने। अब वो दिन दूर नहीं है जब हम सभी को हमारे 84 जन्म एक फिल्म की तरह सामने दिखाई देने लगेंगे। तब हमें पता चलेगा कि तुम हीरो एक्टर हो, तुम बहुत महान हो, और तब वास्तविक नशा चढ़ेगा। बाबा नशा चढ़ा रहा है, कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है, लेकिन रियल नशा चढ़ेगा, तुम कौन हो, कौन सी आत्मा हो। तो अपनी बुद्धि को साफ करेंगे, डिवाइन विजडम से इसको भरेंगे। और आज से आप कर भी रहे होंगे, फिर ध्यान दिलाता हूँ, मेरा बड़ा प्रिय सब्जेक्ट रहा, आपने कई बार सुना होगा, बेफिक्र बादशाह बनो। और उसमें बाबा ने दो तीन बातें ही कही थी, मेरे को तेरे में बदल दो। अब ये रोज की प्रैक्टिस है, रोज ही इसे हमें याद करना पड़ेगा, रोज सुने और सुनाए इसको। मेरापन बहुत गहरी जड़े जमा चुका है, सहज नहीं है उसको जानना भी, कभी कभी मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि मेरापन मैंपन कहाँ काम कर रहा है। मैं बड़ा हूँ घर का, मेरी बात सबको माननी ही चाहिए, मैं बड़ी हूँ, मैंने इतने अच्छे काम किए, मैं न होती तो ये सब कुछ न होता, मैं ही राइट हूँ। बाबा ने बड़ी सूक्ष्म बात कही, मैं राइट हूँ। इससे परे तो मेरे को तेरे में बदल दो, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो। फखुर माना नशा, और एक ही नशा जो बहुत बड़ा है, कौन हमें साथ दे रहा है। मैंने शायद आपको पहले भी ये बात सुनाई हो, मैं बहुत याद रखता हूँ कि समस्याएं आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं, जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ देने वाला कौन है। ये बात तो सभी को अपने सामने कहीं लिख के रख लेनी चाहिए। कोई भी बात आ जाए, बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, हम संसार में बिल्कुल अकेले हो जाएं, विनाश काल में ऐसा समय भी आएगा, हर व्यक्ति अपने को अकेला महसूस करेगा, कोई साथ नहीं है, अकेले। उस टाइम ये लंबे समय का नशा, कौन मेरा साथी है, तुरंत हमें मदद की महसूसता कराएगा, लोनली फीलिंग भी नहीं होने देगा, अकेले हैं हम, बेसहाय हैं, ये फीलिंग भी नहीं होने देगा। इसलिए कौन मुझे साथ दे रहा है। बाबा ने मुरली में कहा था, एक ही बार सुनी वो बात हमने, जब हम छोटे थे तब सुनी, और हम दो तीन भाई मिलके दादी के पास पहुँचे कमरे में, तब दादी के पास कमरे में ही मिलते थे दादी के, बात थी। बाबा ने कहा, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे, तो बाबा के तो ये सब थे, तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। हम सोचते ही रह गए, माना हम कर्मातीत हो जाएंगे संपूर्ण। हम दादी के पास पहुंचे, इस बात को हमने दादी से पूछा, इसको हमें समझाओ, जरा डिटेल करो इसका। उन्होंने बताई कुछ बात, धीरे धीरे समझ में आया कि ये सत्य है कि हम बाबा को पूरी तरह जानते नहीं हैं। अगर हम जानते होते तो निश्चिंत हो गए होते। सोचें सभी, वो कह रहा है मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं हूँ, तुम चिंता ना करो। फिर भी हम चिंता करते हैं, क्या होगा, पता नहीं ऐसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, हम चिंतित रहते हैं, हमने उसको जाना नहीं है। बाबा ने कभी कभी इशारे में कहा, बाप अगर चाहे और संकल्प करे, एक सेकंड में ये संसार स्वर्ग बन जाए, लेकिन बाप तुमसे कराना चाहता है। तो बाबा तो ऐसा है, अगर वो संकल्प करे तो सातों सागर एक सेकंड में सूख जाए, ऐसा बाबा हमें साथ दे रहा है। चलो उसके साथ इस अभ्यास में बैठेंगे, वो हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। त्याग निष्फल न जाए। त्याग किया है तो सब कुछ लेकर ही रहेंगे। इन संकल्पों से अब बाबा छत्र है, इस फीलिंग में बैठेंगे।